તારીખ 29/7/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 176 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન.
પત્રાંક 176 પાનું 252 સૌભાગ્યભાઈ ઉપર 10મો પુત્ર છે. એક મહિનામાં એક બે મહિનાના પરિચયમાં જીવનમુક્ત સૌભાગ્ય મૂર્તિ સૌભાગ્યભાઈ મોરબી. સૌભાગ્યભાઈ કપાસના વેપાર અર્થે ક્યારેક મોરબી પણ રહેતા હતા, સાયલામાં પણ વેપાર કરતા અને ક્યારેક મોરબીની બજારમાં પણ વેપાર કરતા હતા. વિશેષણ તો ઘણું સારું આવ્યું છે, જીવન મુક્ત સૌભાગ્ય મૂર્તિ. ભાવિ નૈગમ નહીંથી વિશેષણ વાપર્યું છે કે આપનું સૌભાગ્ય એવું છે કે મુક્ત થઈ જશો. આમ તો જીવન મુક્ત દશા છે એ અરિહંત પરમાત્માની દશા છે. જીવન એટલે આયુષ્યનું જીવન, આયુષ્યનું જીવન, આયુષ્યનું બંધન હોવા છતાં પણ મુક્તપણે જેનું પરિણમન છે, જીવન છે, એને જીવન મુક્ત કહે છે. મુનિ દીપચંદજી સંબંધે આપનું લખવું યથાર્થ છે. સ્થાનક પાસેના કોઈ મુનિ હશે, એમના યોગ્યતા વિશે કાંઈ આપસમાં લખાણમાં ચર્ચા થઈ હશે, પત્રમાં તો લખ્યું છે કે યથાર્થ છે તમે લખો છો. એવું ભવસ્થિતિ પરિપક્વતા, ભવસ્થિતિની પરિપક્વતા થયા વિના, દીનબંધુની કૃપા વિના અને સંતના ચરણ સેવા વિના ત્રણેય કાળમાં માર્ગ મળવો દુર્લભ છે. ક્યા કહેતે હૈ કે એક તો જિસકી ભવિતવ્યતા પક ગઈ હો, અને જિસકો અભી લંબા ભાવ કી સ્થિતિ હોને વાલી નહીં હો, એસા એસી જિસકી ભાવ કે વિષય મેં યોગ્યતા આ ગઈ હો, દીનબંધુ કી કૃપા મીના, અન્ય મત મેં ઉસકો ઈશ્વરી કૃપા કહેતે હૈ, લેકિન યોગ્યતા એક એસી ચીજ હૈ જો સ્વયં કામ કરને લગતી હૈ. ઉપાદાન કી યોગ્યતા કો યહાં દીનબંધુ કી કૃપા કહી હૈ, સ્વયં કાર્ય કરને લગતી હૈ, કહેના નહીં પડતા ઉસકો, ઉસકો ખુદ હી અંતર સે આત્મકલ્યાણ કી ભાવના રાહ કરતી હૈ. જબ કોઈ જ્ઞાની પુરુષ કે ચરણ મેં વો આ જાતા હૈ તભી ઉસકો માર્ગ મિલ જાતા હૈ. જબ મોક્ષ માર્ગ મિલતા હૈ તબ તીનો બાત હોતી હૈ. એક મોક્ષ માર્ગ જબ મિલતા હૈ કિસી કો તો ઉસકો તીનો બાત હોતી હૈ, ઉસકો ભાવ સ્થિતિ ભી પરિપક્વ હો ગઈ હૈ, ઉસકી યોગ્યતા ભી ઉપાદાન કી ભી અચ્છી હુઈ હૈ, ઓર નિમિત્ત મેં વો સંત કે ચરણ મેં આ જાતા હૈ, જ્ઞાની કે ચરણ મેં વો આ જાતા હૈ, ઉસકી આજ્ઞાકારિતા મેં આ જાતા હૈ, उसकी परम भक्ति में आ जाता है। चरण सेवन का मतलब है अत्यंत भक्ति और आज्ञाकारिता, ये दोनों एक साथ रहता है, अविनाभावी है, उसको मोक्ष मार्ग अवश्य मिलता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मोक्ष मार्ग मिलना दुर्लभ है, मोक्ष मार्ग आसान नहीं है। भक्ति भक्ति है और भक्ति के साथ आज्ञाकारिता आई जाती है, क्योंकि सर्वार्थ सर्वार्पण बुद्धि से समर्पण होता है ना, तो आज्ञाकारिता में वो जीव आई जाता है। तो एक साथ दो पहलू होता है, ऐसी योग्यता में एक साथ दोनों पहलू होता है, अत्यंत भक्ति भी होती है और आज्ञाकारिता भी होती है।
आज्ञा को भक्ति कहे तो क्या मतलब?
ठीक है, पर्याय तो एक है, इसके गुण अनेक है, पर्याय तो एक है, इसके गुण उसके पहलू अनेक होते हैं। जीव ने संसार परिभ्रमण ना जे जे कारणों छे तेमा मुख्य पोते जे ज्ञान माटे शंकित छे ते ज्ञान नो उपदेश करवो, प्रगट माते मार्ग ने रक्षा करवी, हृदय मा ते माटे चलविचलपणु छता पोताना श्रद्धाळुने ए मार्ग यथायोग्य छे उपदेशो, ते सर्वथी मोटू कारण छे। क्या कहते हैं कि जीव को परिभ्रमण होने के बहुत से कारण हैं। दर्शन मुख के कारण जितने भी परिणाम होते हैं विरुद्ध अभिप्राय के, वो सभी परिभ्रमण के कारण है। उस सभी कारणों में एक मुख्य कारण की यहाँ चर्चा किया है, वो प्रसंग वसात ये चर्चा निकल गई है। मुनि दीपचंद जी के विषय में कुछ चर्चा चली है, तो जो संप्रदाय के मुनि होते हैं वो तो गुरु बन के बैठ जाते हैं और दूसरे को उपदेश देते हैं, तो ये एक परिभ्रमण का बहुत कारण में से एक मुख्य कारण है, ऐसा करके लिया। बात तो चली है किसी व्यक्ति विशेष के बहाने से, किसी व्यक्ति के निमित्त से भले ही बात चली हो, जो भी उपदेश देने वाले हो उनको ये सबको लागू होता है, चाहे विद्वान हो चाहे पंडित हो चाहे कुछ भी हो, दूसरों को जो उपदेश देता है उनको सबको लागू पड़ता है, क्योंकि उस वक्त वो गुरु हो गया, वो आचार्य पद को बैठ गया, तो उनको ये लागू होती है कि संसार परिभ्रमण के कारणों में ये एक मुख्य कारण है कि जिस ज्ञान के लिए वो शंकित है माने निशंक नहीं हुआ, अनुभव के बिना निशंकता आती नहीं कभी भी। कोई वांचन से पढ़ाई से धारणा से निशंकता नहीं आ सकती, क्योंकि अनुभव तो उसमें रह गया। जिस ज्ञान के लिए खुद शंकित है, जिसको भीतर में शंका रही है, वही ज्ञान का उपदेश करता है धारणा ज्ञान से, और प्रगट में उसकी रक्षा करता है कि हम जो कहते हैं वो बराबर है, हम कहते हैं वो बराबर है। हृदय में मैंने भीतर में उसके लिए चल विचलित पना है, जहाँ शंका है निशंकता नहीं है वहाँ विचलित पना तो होता ही है, होगा ही है, होगा ही। ऐसा होने पर भी अपने श्रद्धालु जो अपने मानने वाले हैं वो पक्षापक्ष में अपने मानने वाले होते हैं, ऐसा जो अपने मानने वाले हैं उसको ऐसा उपदेश देना कि हम जो कहते हैं वही यथार्थ है, हम कहते हैं वही यथार्थ है, ये परिभ्रमण का सबसे बड़ा कारण है। क्या परिभ्रमण के कारण तो बहुत है लेकिन ये परिभ्रमण से सबसे बड़ा कारण है, ऐसा लिया है। इसलिए गुरु पद में बैठना दूसरे को उपदेश देने में बहुत जोखिम है। हाँ पाप नहीं कोई उत्सूत्र शरीक हो, हाँ उत्सूत्र भाषण जिसको, वो तो क्या है कि वो संप्रदाय में जो साधु लोग होते हैं सूत्र का उत्सूत्र कर देते हैं, खुद को तो पता नहीं है, तो ऐसे तो वो बाहर में तो यम नियम संयम पालते हैं लेकिन उत्सूत्र जैसा कोई बड़ा पाप है ही नहीं। सिद्धांत विरुद्धता अन्यथा सिद्धांत हो जाता है, इससे बड़ा कोई पाप है ही नहीं। जिज्ञासा के लिए बात करना, भावना बढ़ाने की बात करना, जिज्ञासा की बात, तो उपदेश में तो मैं जानता हूँ वो बात आए बिना रहेगी नहीं। मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, इसलिए तुम लोगों को बताता हूँ। और उसमें भी एक बात वो है छिपी हुई है कि हम परिवार वाले को क्यों उपदेश देते हैं, क्या हम इस बहाने हमारा अपनत्व दृढ़ नहीं करते हैं क्या, कि मेरे परिवार वाले हैं इसलिए वो सन्मार्ग में आए तो अच्छा है, उनको वो बात समझ में आए तो अच्छा है, मेरे हैं इसलिए ना। तो ये सही बात करने के बहाने परिवार में अपनत्व क्या हम नहीं कर सकते, नहीं करते हैं, इसका क्या? हम पड़ोस के लिए ऐसा करते हैं प्रयास, क्या दूसरे के लिए करते हैं, वो प्रवृत्ति करते हैं क्या, क्या नहीं करते हैं? तो मेरे परिवार वाले हैं अगर वो समझे तो अच्छी बात है, मेरा पना आया वो ध्यान में नहीं रहेगा। दूसरा कि हम उपदेश देने लायक है ही नहीं, हमको तो उपदेश लेना है, देना कहाँ है, उपदेश लेना है तो पहले तो हम वो काम करें, प्रथम ले ही उपदेश, तो पहले तो उपदेश लेने की बात है, अपना काम पूरा बाकी है उपदेश देने की, हाँ नहीं दे उपदेश को, उपदेश देने में तो कहाँ कितना नुकसान हो जाएगा वो पता नहीं चलेगा। जिसको अपना पूरा काम बाकी है ऐसा भान नहीं रहता है तब तो उपदेश देने लगता है, फिर चाहे परिवार के बहाने कर दो, हम बड़े हैं वो छोटे हैं, ऐसा है वैसा है, ये सब आ जाएगा। हम बड़े हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसका मतलब कि परिवार में सब जीव स्वतंत्र है वो बात तो रही नहीं, हमारी नजर तो अपना परिवार वाली तो पहली हो गई, बाद में उपदेश की बात हो गई। वो भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। ये सबसे परिभ्रमण का बड़ा कारण है। आमज आप ते मुनिना संबंध में विचार सो तो लागी सकसे, इसी कारण से बात चली है कि दीपचंद जी के मुनि में आप विचार करेंगे तो ये बात आपको मेरी बात सही लगेगी कि देखो ये इसका परिभ्रमण का कारण सब बड़ा चल रहा है, उसको दूसरों को उपदेश देता है, खुद का तो कोई ठिकाना है ही नहीं। पोते शंका में गड़का खाते होय एवो जीव निशंक मार्ग बोधवानो दंभ राखी आखू जीवन गाळे ए तेने माटे परम शोचनीय छे। क्या कहते हैं कि खुद तो शंका में डुबकी खाता है, कभी बाहर निकलता है कभी अंदर जाता है। गड़का खावाना अर्थ हो गड़का मैंने क्या है कि जो डूबता है वो डूबने वाला कभी अंदर जाता है कभी बाहर आता है, कभी अंदर जाता है पानी में कभी बाहर आता है, इसको बोलते हैं गड़का खाए से। अब हिंदी में भी कुछ होगा, गोता गोते खाने, ठीक है। पोते शंका में स्वयं तो गोते खाते हो, ऐसा जी निशंक मार्ग का उपदेश देने का दंभ मैंने आडंबर रखता है, निशंकता से जैसे बोलता है स्पीच देता है और उसी तरह पूरा जीवन वो साधु बन गया तो ऐसा जीवन पूरा निकालेगा, वो इसके लिए परम शोचनीय है। शोचनीय मतलब विचारणीय है, दुख के साथ विचार करना वो शोचनीय है, एक दुखदायक बात है, करुणा होवे ऐसी बात है। मुनिना संबंध में आ स्थले कई कठोर भाषा में लिख्यू छे एम लागे तो पण तेवो हेतु नथी ज। यदि हमारे शब्द कठोर लग जाए लेकिन हम करुणा से लिख रहे हैं, कोई द्वेष बुद्धि से ये कठोर भाषा नहीं निकली है, ऐसा कहने का मतलब है। निष्कारण करुणा, ज्ञानी की निष्कारण करुणा से जो तीर्थंकर द्रव्य होता है उसको तीर्थंकर प्रकृति का अनुबंध होता है और इसके फल स्वरूप जब ये तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है तो वाणी खिरती है, दिव्य ध्वनि खिरती है। वो निष्काम भाव से जो रागांश चला करुणा का, इसका फल आया उधर। और ऐसे फल से भी अनेक 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 जीवों का बेड़ा पार होता है। ऐसी बात है, एक न्याय से निष्कामता है वो वितरागता के साथ मेल खाने वाली बात है। तो वितरागता में राग नहीं, ऐसे निष्कामता के में फल का राग, राग राग है लेकिन राग का फल का राग नहीं और राग का राग नहीं है, दोनों बातें, राग का राग भी नहीं है और राग के फल जो आता है उसका भी राग नहीं है, उसको कहते हैं निष्कामता। इसलिए जहां भी निष्कामता हो वहां मलिनता मुमुक्षुता में भी कट जाती है, निर्मलता आने लगती है। जैसे कोई निष्काम भक्ति होती है तो निर्मलता आने लगती है। वो हेतु नथी जो जेम छे तेम करुणार्द्र चित्ते लिखू छे। करुणा थी आर्त चित्त होने से लिखा है कि अरे रे इस जीव को परिभ्रमण का कारण हो रहा है, बहुत नुकसान होने वाला है, बहुत दुखी हो जाएगा। एमज बीजा अनंता जीव पूर्व काले रखड़ा छे, वर्तमान काले रखड़े छे अने भविष्य काले रखड़शे। आवी रीते बीजा ने उपदेश देवामां भूतकाल में पोते पण रखड़ो छे, अनंता जीवो रखड़ा छे, वर्तमाने रखड़े छे, भविष्य में पण रखड़शे। वो सिद्धांतिक बात हो गई कि जिस विषय में हमारा अनुभव नहीं हो उस विषय का उपदेश नहीं देना। इसलिए जो मुमुक्षु है वो भी जो सत्संग लेते हैं वो भी अपने अनुभव की चर्चा करेंगे, दूसरी चर्चा नहीं करेंगे। आगे की बात है बोल देंगे, हमारे अनुभव में नहीं समझ में आती है, सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, समझी हुई है, लेकिन हमारे अनुभव की नहीं। अनुभव की बात बताएंगे और ऐसा यथार्थ सत्संग तो ऐसा ही चलता है। जे जीव छूटवा माटे जीवे छे ते बंधन मां आवतो नथी। आ वाक्य निशंक अनुभव नो छे। खुद जो बात करते हैं वो भी अनुभव से करते हैं, बिना अनुभव नहीं करते। जो जीव छूटने के लिए जीता है वो बंधन में नहीं आता, क्यों कि हर उदय प्रसंग में वो छूटने का प्रयास करेगा, हर उदय प्रसंग में वो छूटने का प्रयास करेगा। तो जीता है, जीवन तो जीता है लेकिन छूटने के लिए जीता है। जो भी उदय आएगा मेरा ये छूटने का प्रयोग हो जाएगा, जो भी उदय आएगा मेरा छूटने का प्रयोग बनेगा। वो बंधन में नहीं आता है। यह बात निशंक अनुभव की लिखी है, हमारा अनुभव से वो बात हम लिख रहे हैं। फिर से लिखते हैं, बंधन नो त्याग करे छुटाई छे एम समझवा छता तेज बंधन ने वृद्धि कर्या करवी, तेमा पोतानु महत्व स्थापन करवो, पूज्यता प्रतिपादन करवी, ए जीव ने बहु रखड़ावनारो छे। आवी समझण समीपे आवेला जीवने होय छे। केवी सरस बात लखे छे, समीपे ते मार्गनी समीपे, जे मुक्तिना मार्गनी समीपे जे जीव आव्यो होय छे एने एवी समजण होय छे। એટલે કે જે મુક્તિના માર્ગ સમીપે નથી હોતો એને આવી સમજણ નથી હોતી, કેમ કે મુનિનો પ્રસંગ ચાલે છે ને, કે બંધનનો ત્યાગ કરે એટલે એને શું કર્યું કે કુટુંબના બંધનનો ત્યાગ કર્યો. હવે એની સ્ત્રી એમ ન કે તમે ઘરે વહેલા આવજો, એનો દીકરો એમ ન કે તમે પિતાશ્રી તરીકેની ફરજ બજાવો. શું બંધન મુક્ત છે ને, દીક્ષા લીધી એટલે કુટુંબિક કાર્યોના અને સામાજિક કાર્યોના બંધનથી મુક્ત થઈ ગયા. તો બંધનનો ત્યાગ કરે છૂટાય છે, એ વાત જરૂર છે કે બંધનનો ત્યાગ કરે છૂટાય છે, એમ સમજ્યા છતાં તે જ બંધનની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી. એક કુટુંબ છોડ્યું ને સેંકડો કુટુંબ સાથે સંબંધ બાંધ્યો, આ ગામમાં અમારા આટલા, આ ગામમાં અમારા વાળા આટલા, આ ગામમાં અમારા વાળા આટલા. હે, આજકાલ સાધુઓમાં શું હશે, કેટલાક લોકો કોઈને માને, કેટલાક લોકો કોઈને માને. સતામપુરમાં તો બહુ જ છે, અમે ફલાણાના સંઘાડાના, અમે ફલાણાના સંઘાડાના, અમે ફલાણાના સંઘાડાના થઈ રહ્યું. અને સાધુને એટલા કુટુંબ બીજા એમ છોડ્યું, સેંકડો થઈ ગયા. બંધનનો ત્યાગ કરે છૂટાય છે, એમ સમજ્યા છતાં તે જ બંધનની વૃદ્ધિ કર્યા કરવી, તેમાં પોતાનું મહત્વ સ્થાપન કરવું, અપના બડપ્પન કી સ્થાપના કરવા. હમ એસે હૈ, હમ આચાર્ય હૈ, હમ મુનિ હૈ, હમ એસે હૈ, હમ ત્યાગી હૈ. પૂજ્યતા પ્રતિપાદન કરવી અપને પ્રતિ દૂસરે લોકો કી, વો તો ગુરુ કે સ્થાન મેં બેઠતે ને, પૂજ્યતા કા પ્રતિપાદન કરના, એ જીવને બહુ રખડાવનારું છે, બહુ પરિભ્રમણ કરાને કા કારણ હૈ. જ્ઞાની કી નજર મેં દેખો, સંપ્રદાય કે ગુરુ કેસે હૈ કે ઓહો બેચારે બહુ પરિભ્રમણ કરેંગે, બહુ પરિભ્રમણ કરેંગે, બહુ ગડબડ બઢ ગઈ તબ યે હુઆ હૈ, એસા દિખતા હૈ. દેખો એસી સમજ મોક્ષ માર્ગ કે સમીપ આને વાલે જીવ કો હોતી હૈ. જો મોક્ષ માર્ગ સે દૂર હૈ ઉનકો સમજ નહીં હૈ, ઇસલિયે વો એસી પ્રવૃત્તિ કરતે હૈ, એસા કહેતે હૈ. અસ્તિ મેં નાસ્તિ સમજ લેના, વાત ઢંગ સે કરતે હૈ, એસી સમજ મોક્ષ માર્ગ કી સમીપ આને વાલે જીવ કો હોતી હૈ. इसका मतलब कि ऐसे लोगों को मोक्ष मार्ग की समीपता भी नहीं है, ऐसी बात होगी. अने तेवा जीवो समर्थ चक्रवर्ती जेवी पदवीए छता तेनो त्याग करी કરપાત્રમાં ભિક્ષા માગીને જીવનાર સંતના ચરણને અનંત અનંત પ્રેમે પૂજે છે અને જરૂર તે છૂટે છે. શું કહે છે, જેને જીસકો યથાર્થ સમજ હોતી હૈ વો તો સમર્થ ચક્રવર્તી, મેને બહોત પુણ્ય કી પદવી, સર્વોચ્ચ પુણ્ય કી પદવી ચક્રવર્તી કી મનુષ્ય મેં હોતી હૈ, ઉસકા ભી ત્યાગ કરકે, મેને ઉસકા અભિમાન છોડ કરકે, કરપાત્ર મેં ભિક્ષા માંગને વાલે, જીવન જીને વાલે સંત ચરણ કો, સંત કે ચરણ કો અનંત અનંત પ્રેમ સે પૂજતે હૈ. ઓ કરપાત્રમાં ભિક્ષાની વાત એમણે 24મા વર્ષે કરી છે. કર્કપાત્ર મેં ભિક્ષા દિગંબર જૈન સિવાય કોઈ જગે નહીં હૈ. ઓર તો સબ સિતાંબર મેં તો પાત્ર રખતે હૈ ભિક્ષા કે, और दूसरे संप्रदाय में नग्न साधु होते हैं फिर भी वो तुम्बड़ी रखते हैं। खाने में क्या रखते हैं? जंगल में एक वनस्पति होती है, इसकी छाल कठिन हो जाती है, जैसे नारियल की छाल होती है, बड़ी तुम्बड़ी जैसी होती है, उसमें सब डाल देते हैं, रोटी दाल भात चावल सब्जी ये सब इकट्ठा करके फिर खा जाते हैं। करपात्र में दिगंबर जैन सिवा कोई नहीं। करपात्र में भिक्षा मांग करके जीने वाले संत के चरण कैसे संत लिया है? दिगंबर मुनि लिया है, भावलिंगी संत, जिसको यथार्थ समझ आती है वो तो भावलिंगी संत के श्री गुरु के चरण में चले जाते हैं, उसके चरण को अनंत अनंत प्रेम से पूजते हैं। इसको ऐसा होना है, इसका मतलब ये है कि उसको ऐसा होना है कि आप जैसे हुए ऐसा हमको होना है। भावलिंगी दिगंबर संत मैंने चलते फिरते सिद्ध देखते हैं, वो क्या देखते हैं? ये साक्षात प्रकट मोक्ष तत्व है। वैसे तो मोक्ष मार्ग में है लेकिन उनको आचार्यों ने मोक्ष तत्व बोला है। प्रवचन सार में आखिरी गाथा है मोक्ष तत्व, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का प्रतिबंध नहीं होता, इसलिए ऐसे संत के चरण को अनंत प्रेम से पूजते नहीं, अनंत अनंत प्रेम से पूजते हैं। कितना भाव आया है कि खुद को भाव आया है, अपनी भावना है ना, ऐसा बनेंगे तो ऐसा ऐसा भाव आएगा, अनंत अनंत प्रेम से उसकी पूजा करते हैं और जरूर वो छूट जाता है, उसका तो बेड़ा पार हो गया, वो छूट जाता है। दीन बंधु ने दृष्टि एवी छे के छूटवाना कामी ने बांधवो नहीं अने बांधवाना कामी ने छोड़वो नहीं, एमने लाक्षणिक पद्धति से गुड भाषा। दीन बंधु मैंने कुदरत, कुदरत की कोई ऐसी परिस्थिति है कि जे छूटवानो कामी छे ने बांधती नथी, जेने अंतरथी छूटी जवुं छे एने कोई बांधी सके नहीं, एने एने कुदरत पण बांधती नथी। एनी भावना छे ने छूटवानी, छूटवानी भावना एने कुदरत नथी बांधती, एम जो अने बंधावाना कामीने छोड़वो नहीं, जेने बंधावुं छे एने कुदरते छोड़ती नथी, एने बांधे बंधन आवे एवा ज उदय आवे। વાત તો પોતા ઉપર ઉતારવાની છે, સ્વલક્ષ્ય વિચારવાની વાત છે કે હું જો છૂટવાનો કામી હો તો ભગવાનની એવી દીન બંધુ એટલે દીન ઉપર કૃપા કરનારા ભગવાનની એવી કૃપા છે એને મને બાંધે જ નહીં, બંધાવાનો કામી અંદરથી હોય એને ભગવાન છોડે નહીં એને બાંધે, એમ કે છે ઠીક એમની ભાષામાં લખે છે, સુભાગભાઈની ભાષામાં લખે છે। બાકી તો જેને અંતરથી છૂટવું છે એ છૂટવાના રસ્તે જાય છે દરેક પરિસ્થિતિમાં, અને જે બંધાવાનો કામી છે એ ત્યાગી થઈને પણ બંધાય છે, ઓલો ભોગી થઈને છૂટે છે ને આ ત્યાગી થઈને બંધાય છે, એમ કહેવું છે। બોલો, પૂર્વકર્મથી ભોગો ભોગમાં હોય એ છૂટે છે, આ ત્યાગી થઈને બંધાય છે, કેમ કે એને ભોગો ભોગ સાંભળે છે। એટલે એવી જ કોઈ દિનબંધુની દ્રષ્ટિ એટલે એવી જ કોઈ કુદરતી વ્યવસ્થા છે. અહીં વિકલ્પી જીવને એવો વિકલ્પ ઉઠે, કોને ઉઠે? તર્ક વિતર્ક ઉઠતા હોય એવા જીવને એને વિકલ્પી જીવ કીધો. બહુ વિકલ્પ કર્યા કરે, આમ તો અપ્રયોજનભૂત. કે કોઈ જીવને બંધાવવું તો ગમતું નથી, અને સર્વને છૂટવાની ઈચ્છા છે તો પછી બંધાય છે. કાં શું કરવા બંધાય? બધાને છૂટવું જ છે, પછી શું કરવા બંધાય? એ વિકલ્પની નિવૃત્તિ એટલી જ, એટલે એની સમાધાન એટલું જ કે એવો અનુભવ થયો છે કે જેને છૂટવાની દ્રઢ ઈચ્છા થાય છે તેને બંધનનો વિકલ્પ મટે છે, અને એ આ વાર્તાનો સત્સાક્ષી છે. પોતે જ પોતાની સાક્ષી આપી દીધી. શું કહે છે કે એ વિકલ્પની એવા પ્રશ્નનું સમાધાન એવું છે કે હમકો એસા અનુભવ હુઆ હૈ કે જિસકો છૂટને કા દ્રઢ ઈચ્છા હોતી હૈ ઉસકો બંધન કી શંકા નહીં હોતી. ઉસકો બંધન કા વિકલ્પ મિલ જાતા હૈ. મેં કંઈ બનતા તો નહીં ને, મેં કંઈ બંધતા તો નહીં ને, એસા હોને સે બંધન તો નહીં હોગા ને, ઉસકો છૂટ જાતા હૈ. और इस बात करने वाले का हम खुद ही साक्षी हैं, हम खुद ही इसका प्रमाण है, ऐसा कहते हैं. सबूत है कि जिसको वो छूटने की दृढ़ इच्छा होती है वो किसी परिस्थिति में बंधन में नहीं आता. और भी दो पैराग्राफ है यहाँ तक.